चाहत को घर छोड़ने के बाद आहान घर आ रहा था। चाहत पर गुस्सा होने की वजह से आहान काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था और उसने अनजाने में एक साइकिल सवार का एक्सीडेंट कर दिया। उस लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद आहान वापस घर को लौट रहा था। इस बार आहान गुस्से में जरूर था, लेकिन काफी केयरफुल होकर ड्राइव कर रहा था। रात के लगभग 2 बजे के करीब आहान घर पर पहुंचा। जैसे ही उसने गाड़ी पार्क की और अंदर जाने लगा तो उसकी नज़र तनु पर पड़ी, जो अब तक वहां खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आहान ने तनु की तरफ देखा और सिर हिला दिया। वो उसके पास जाकर धीरे से बोला, मैंने तुम्हें मना किया था ना घर पर आने के लिए। मना तो मैं भी तुम्हें बहुत सी चीज़ों के लिए करती हूँ, तुम मेरी सुनते हो जो मैं तुम्हारी सुनूं, तनु ने भौहें उठाकर कहा और फिर आहान को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। तनु ने अपने चेहरे पर फिक्र दिखाते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उस लड़के को भी ज्यादा चोट नहीं लगी जिसका मैंने एक्सीडेंट किया था। आहान ने काफी लापरवाही से जवाब दिया और अंदर जाने लगा। उसने तनु को अपने पीछे आने का इशारा किया। तनु आहान के पीछे कमरे में जा रही थी। वो दोनों लिविंग एरिया रूम में पहुंचे। आहान उनके लिए वाइन की बोतल लेकर आया और 2 ग्लासेस में सर्व की। उसने एक ग्लास तनु की तरफ बढ़ाकर कहा, लगता है तुम्हारी जॉब काफी लंबी चलने वाली है, या यूं कहूं कि उम्र भर तुम्हें इस जॉब से छुटकारा नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल कर सकता है। मुझे तो अपनी नौकरी खतरे में लग रही थी, और तुम अब कह रहे हो कि मेरी जॉब उम्र भर नहीं जाने वाली। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, जो कहना है सीधे सीधे कहो, तनु ने थोड़ा अग्रेसिव होकर कहा। वो आहान की बातों से कंफ्यूज हो रही थी। वो जो इंसान है वो एक लड़की है, वो उम्र में काफ़ी कम है, मतलब इतनी भी कम नहीं है, पर हम दोनों से छोटी ही है। वो दिखने में बहुत खूबसूरत है, उसकी छोटी छोटी ग्रे कलर की आईज हैं, और जब मैं उसमें देखता हूँ तो न जाने कहाँ खो जाता हूँ और मेरा गुस्सा गायब हो जाता है। आहान तनु को चाहत के बारे में बता रहा था। उसके बारे में बताते हुए आहान की आंखों के सामने चाहत का चेहरा घूम रहा था और उसके फेस पर छोटी सी स्माइल थी। तनु ने इस तरह आहान को जेन्युइन स्माइल करते हुए काफी कम मौके पर देखा था। आहान को मुस्कुराकर देख उसके फेस पर भी स्माइल आ गई। उसने उसी लहजे में कहा, ओ तो ये ऐसा कहो ना कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। प्यार तो नहीं कह सकता, पर एक अट्रैक्शन है, मुझे वो अच्छी लगती है। पर प्रॉब्लम ये है कि उसने मेरे यहाँ काम करने से साफ मना कर दिया है। मैं उसे सीधे सीधे बात भी नहीं सकता कि मैं उसे अपने पास क्यों लाना चाहता हूँ, कहीं वो डर कर दूर चली गई तो। आहान बोलते हुए रुक गया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस फिर से सीरियस हो गए। अच्छा, तो खोने से भी डरते हो और फिर कहते हो प्यार नहीं है। तुम कहो तो मैं बात करके देखूं उससे, शायद वो मान जाए। जरूर तुमने उसके सामने अच्छा सैलरी प्रपोजल नहीं रखा होगा, तनु ने जवाब दिया। वो आहान से बात करते हुए वाइन की सिप ले रही थी। आहान ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, बात पैसों की होती तो अब तक उसे घर पर ले आता, वो अलग टाइप की है। उसे जॉब की ज़रूरत भी है, पर फिर भी वो मेरे पास नहीं आना चाहती। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मैंने उसे 3 से 4 दिन का टाइम दिया था और कल का दिन आखिरी है। जब मैं उसे घर ड्रॉप करने गया था तो उसने मुझे साफ मना कर दिया कि वो कल भी नहीं आएगी। तुम मेरे गुस्से को जानती ही हो, मैंने भी उसे कह दिया कि अगर वो कल नहीं आई तो मैं कभी उसे अपनी लाइफ में नहीं आने दूंगा। वो पैर पकड़कर भी मुझसे मदद की भीख मांगेगी, तब भी मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसे पैसे और जॉब की कितनी ज़रूरत है। आहान ने तनु को अपनी और चाहत के बीच की सारी बातें बता दी। वैसे भी वो उसकी साइकियाट्रिस्ट थी, तो आहान को थेरेपी के लिए उसे अपनी हर एक बात और राज बताना पड़ता था। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी थीं जो आहान तनु से छुपा कर रखता था। अगर तनु आहान के डार्क सीक्रेट्स जान जाती तो वो क्या कोई भी लड़की उसकी थेरेपी नहीं करती, और इस वक्त वो किसी मेंटल असाइलम में पड़ा होता। पूरी बात जानने के बाद तनु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर कुछ सोचते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही लड़की है ना जिसके लिए तुमने पार्टी में तमाशा किया था? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, उस लड़की को भी तुमने ही गिराया होगा, वरना उसकी जगह कोई और होती और वो तुम्हारे ऊपर ड्रिंक गिरा देती तो तुम सबके सामने उसे थप्पड़ तक लगा देते, पर तुमने ऐसा नहीं किया और चुपचाप उसे जाने दिया। हाँ, वो वही है, और मैंने जानबूझकर वो सीन क्रिएट किया था ताकि उसे पार्टी से निकलवा सकूं। अब तुम उसके बारे में बात करना छोड़ो और ये बताओ कि कल के दिन में मैं डॉल को अपने पास कैसे लेकर आऊं? आहान ने हल्का चिढ़कर कहा। वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन चाहता था, ना कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करना। सबसे पहले तुम्हें अपनी जिद छोड़नी होगी कि कल के बाद अगर वो लड़की तुम्हारे पास नहीं आई तो तुम उसे अपनी लाइफ में कभी नहीं आने दोगे। क्या तुम इतनी आसानी से उसे भूल जाओगे? तनु ने आहान से पूछा। आहान का ऐसा नेचर नहीं था कि उसे कोई चीज पसंद आने पर वो इतनी आसानी से उसे जाने दे। तनु के पूछने पर आहान के फेस पर ईविल स्माइल थी। उसने जवाब में कहा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ये करूंगा? उसे मेरे पास आना होगा, लेकिन फिर मेरे तरीके से, नहीं, तुम उसे किडनैप नहीं करोगे और जबरदस्ती तो अपने पास बिल्कुल नहीं रखोगे, तनु ने झट से जवाब दिया। आहान की हर बात का मतलब उससे बेहतर कौन समझ सकता था। फिर अचानक उसके मन में कुछ स्ट्राइक हुआ तो उसने अपने चेहरे के भाव सीरियस किया और धीमे से पूछा, देखो मैंने पिछली बार तुम्हारी हेल्प की थी, इस बारे में किसी को मत बताना। वैसे तुमने उसे छोड़ तो दिया है ना? उसके बारे में बात मत करो, मैंने तुम्हें कहा था ना मैंने अगले दिन ही उसे छोड़ दिया, आहान ने झट से जवाब दिया। वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तनु को गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चला गया। तनु अब तक वहीं पर बैठी थी। उसने आहान के कमरे की तरफ देखा जहां लाइट बंद हो चुकी थी। फिर उसने खुद से कहा, अगर आहान ने उसे छोड़ दिया है तो वो अब तक मिसिंग क्यों है? आई होप उसके साथ कुछ गलत ना हुआ हो। आहान के जाने के बाद तनु भी वहां से जाने लगी। उसे एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि आहान उससे झूठ भी बोल सकता था। उसके हिसाब से आहान उसे हर एक बात बताता था, पर हाँ ये आहान पर डिपेंड करता था कि वो कौन सी बात उसे किस हद तक बता रहा है। अगले दिन सुबह चाहत उठी। उसके चेहरे पर कॉलेज जाने का एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रहा था। जॉब ना होने पर वो देर से ही उठती थी, लेकिन आज चाहत टाइम से उठकर तैयार हो गई थी। कॉलेज जाने के लिए उसने उसी के हिसाब से स्टाइलिंग की थी। उसने बैगी डेनिम पैंट्स और ऊपर क्रॉप टी शर्ट पहना था और अपने बालों का फंकी हेयर स्टाइल बना रखा था। चाहत लगभग 9 बजे के करीब तैयार हो चुकी थी और वो बाहर आई तो उसकी माँ और नानी किचन में उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। उनके साथ श्रद्धा भी थी। चाहत को देखकर निशाने सिर हिलाकर कहा, बेटा क्या जरूरत थी श्रद्धा को परेशान करने की, मैं खुद देख लेती ना। अरे कोई बात नहीं आंटी, मैं आपको कंपनी दूंगी। अब मैं आपकी बेटी की तरह तो हूँ नहीं जो इस एज में भी सेकेंड ईयर में है। अब तक मेरे साथ इसकी भी कॉलेज हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैडम रेगुलर क्लासेस अटेंड करें तब ना, श्रद्धा ने बात को टालते हुए कहा। फिर उसने चाहत का हाथ पकड़ा और उन दोनों से अलग ले आई।
पार्वती और निशा से दूर आते ही चाहत श्रद्धा के गले लग गई। उसने बिल्कुल धीरे से कहा, थैंक यू सो मच यार मेरे एब्सेंस में माँ का ध्यान रखने के लिए। जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती कि वो पूरी तरह ठीक हैं, मैं उन्हें काम करने नहीं दे सकती। आज तुम पूरा दिन उन्हें मॉनिटर करोगी, अगर वो बिना किसी प्रॉब्लम के काम कर पा रही हैं तभी मैं उन्हें काम करने की परमिशन दूंगी। बोलते हुए चाहत श्रद्धा से अलग हो गई। वो उसे हर एक बात अच्छे से समझा रही थी। हाँ देवी माँ, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। रात से ये बात तुम मुझे 4 बार बता चुकी हो। अब तुम बेफिक्र होकर कॉलेज जाओ, नोट्स मुझसे ले लेना और कोई चीज़ समझ ना आए तो तुरंत कॉल कर लेना। बोलते हुए श्रद्धा ने चाहत के सामने हाथ जोड़ लिए, जिस पर चाहत हल्का सा हंस पड़ी। चाहत ने नाश्ता किया और फिर कॉलेज के लिए निकल गई। वहीं मोंटी चाहत के पीछे था। जैसे ही उसने कॉलेज में चाहत को घुसते हुए देखा वो भी हैरान हुआ। उसने आहान को कॉल किया और तुरंत उसे सारी बात बताई। ये अचानक जॉब ढूंढने के बजाय वो कॉलेज कैसे जा सकती है? क्या उसे काम नहीं करना? वो इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं कि उसे वहाँ कोई जॉब मिल जाए, आहान ने चौंकते हुए कहा। उसने अब तक यही तैयारी की थी कि चाहत को कहीं जॉब ना मिले और वो मजबूरी में उसके पास आ जाए, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा था। चाहत जॉब ढूंढने के बजाय कॉलेज में गई थी।